हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग बोलिए राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे श्रीमती राधा रानी की श्री रावल धाम की जय जय श्री राधे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी जो डॉक्टर्स हैं मीरा रोड के जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के बनाने में हमारा थोड़ा सहयोग रहा है उस सब में कवि भक्त जो है वो गिरिराज प्रभु है रसिक भक्त और शुरू से कवि रहे हैं और फिर भक्ति में आने के बाद उनका कवित्व जो है और सुंदर हो गया है इसलिए वो जब भी कोई कथा कहते हैं या कुछ बात कहते हैं उसमें बहुत गहराई होती है और बहुत दिव्य अनुभूति होती है उसके। सो कैसा है ना कि जब भी कोई सब्जी बनती है ना तो उसके अंदर नमक भी होता है कभी थोड़ा गुड़ भी डालते हैं थोड़ा सा मिर्ची भी डालते हैं तो सब्जी भी डालते हैं अलग अलग प्रकार की और सब मिलके एक सुंदर सब्जी बनती है ना। तैसे हम कैसे कहते हैं से क्या कहते हैं उसको कठोर मैनेजमेंट है ना तो कोई कभी भी होना चाहिए बीच में थोड़ा सा रस को देने के लिए। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधा रानी के विषय में आपने बहुत सुंदर कथा बताई। तो हम लोग अभी रावल धाम में आए हैं। रावल ये गोकुल क्षेत्र में आता है और शास्त्र में इसका नाम लिखा है मुख्य रावली ये उसका शास्त्रिक नाम है मुख्य रावली। हरे कृष्णा मुख्य रावली के नाम के लिए वेलकम हो गया हमें म्यूजिक के साथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये हमारे संप्रदाय के बहुत ही रसिक आचार्य रहे हैं राधा कुंड में निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे और उन्होंने जो भी कुछ नोट्स लिखे थे वो चैतन्य चरितामृत का सेकंड पार्ट जो है वो उनके नोट्स के द्वारा उनके प्रवचनों के द्वारा सुनकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो उन्होंने स्तवावली नाम का एक ग्रंथ लिखा है बहुत सारे ग्रंथ लिखे उसमें वो कहते हैं कि मैं मुख्य रावली धाम जो राधा रानी का जन्म स्थान है उसे कोटि कोटि प्रणाम करता हूं ऐसे उन्होंने लिखा है उसके अंदर स्तवावली में क्योंकि राधा रानी रहती है बरसाना में वो उनका निज धाम है लेकिन उनका जन्म यहां पर हुआ है। अभी कथा के बाद में आपको ले जाएंगे वहाँ पर पीछे बहुत सुंदर अभी कुंड बना है वहाँ पर, उसका नाम है किशोरी कुंड। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग वास्तव रूप में वहाँ पर यमुना जी बहती थी। यमुना जी पूरे वृंदावन धाम में बहती थी, गोवर्धन में भी बहती थी, नंदगांव बरसाने में भी बहती थी। अभी सब उसका रूट जो है वो 5000 साल में कई जगह पर चेंज हो गया है, और यहाँ पर भी यमुना जी का जन्म या राधा रानी का जन्म जो है वो यमुना जी में हुआ है। तो कई साल पहले यहाँ पर यमुना जी नहीं थी, अब हम आते थे। लेकिन जब राजा, अरे व्हाट इज हैपनिंग, जब राजा भक्त होता है तो अनेक धार्मिक कार्य अपने आप होने लगते हैं। तो पीछे इतना सुंदर कुंड बना दिया है, तो मैंने लाख लाख धन्यवाद दिया योगी जी को, और उनके लिए प्रार्थना भी की मैंने कि एक राजा होगा तो कई धार्मिक स्थान जो है उसका पुनरुज्जीवन हो सकता है। हम लोग उधर काम्यवन में गए थे, इतना खंडेर जैसा था वो कितने सालों तक, अभी तो आदि बद्री आदि केदार तक पक्के रास्ते सीमेंट के बने हैं, और वो 84 कोस की परिक्रमा जो है वो पक्के रास्ते में करने का इंतजाम किया है। पूरा ब्रज सभी प्रोजेक्ट, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके लिए संकल्प चाहिए, इच्छा चाहिए। तो बड़ा आनंद हुआ आज देखे वो कुंड, इतना विशाल कुंड, इतनी सुंदर बाउंड्री के साथ बनाए हैं। पीछे का ऐसा मैदान है जो 10,000 लोगों की भागवत कथा हो सकती है, इतना सुंदर मैदान है। एनीवेज, तो राधा रानी के जन्म की कहानी थोड़ी विचित्र है। हिमालय को पार्वती देवी प्राप्त हुई, हिमालय पर्वत और पार्वती, और पार्वती का विवाह जो है वो शंकर से हुआ। तो शंकर तो महादेव है, तो महादेव जी को कंस भी पूछते थे, है ना। भूतेश्वर महादेव नाम का एक महादेव जी हैं, वो मथुरा में हैं, और मथुरा में कंस उनको कृष्ण को मारने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए पूछते थे। क्या करें, अभी जब ही राक्षसी भाव होता है ना तो मति भी भ्रष्ट हो जाती है, क्या किसको पूछ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। वो महादेव स्वयं कृष्ण के परम वैष्णव भक्त हैं, और इनको बोल रहे हैं कृष्ण को मारने का नुस्खा दे दो, तो कैसे देंगे वो, नॉट पॉसिबल। सारी प्रार्थना पूजा वेस्ट, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो महादेव जी पार्वती को प्राप्त हुए, तो विंध्य पर्वत जो है ना, सब व्यक्ति हैं, ये पर्वत रूप में सेवा कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति हैं सब, और पीपल। तो वो विंध्य पर्वत को वैसी इच्छा हुआ, हमारी जो कली हैं हिमालय, वो इतनी सुंदर कन्या प्राप्त हुई, भाग्यशाली, महादेव की पत्नी बनी वो। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, बोल के ऐसा यज्ञ करो कि हमें ऐसी कन्या प्राप्त हो, देखो सुनो हाँ, हमें ऐसी कन्या प्राप्त हो जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो महादेव को भी परास्त कर सके, मतलब हमारी कन्या का जो पति है वो महादेव से भी श्रेष्ठ होना चाहिए, बाय ओनली महादेव। तो ब्राह्मणों ने सब किया, यज्ञ किया, और उनको दो कन्याएं हुई विंध्याचल को, राधा रानी और चंद्रावली, और वो विंध्य पर्वत पर उनका बाल्यपन शुरू हो गया। तो कंस को ये खबर मिली कि विंध्याचल ने ऐसा ऐसा यज्ञ किया है जिसके वजह से इस बेटी का जो भी पति होगा महादेव को परास्त करने के योग्य होगा। कैसा दिमाग चला था राक्षस लोग ना, कंस को पता चला, तो कंस को लगा कि इसका विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। देखो, जिसका पूजन कर रहे हैं उसी को परास्त करने का भी सोच रहे हैं। भस्मासुर जिसका पूजन कर रहे हैं उसके सर पे हाथ रख के उसको ही भस्म करके उसके पत्नी को छीनना चाहता है, दिस इज राक्षस। कब किसकी पूजा करेगा, कब किसके साथ, उसके साथ कब युद्ध करेगा, कोई भरोसा नहीं होता है उसका। देयर इज नथिंग कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट एक ही होता है, खुद का स्वार्थ, दैट्स ओनली कॉन्स्टेंट, दैट इज राक्षसी प्रवृत्ति। तो फिर उसने क्या किया, मैंने कहा था ना कंस में दिग्विजय करके सब राक्षसों को एकत्र करके मांडलिक बना के रखा था, उसने पुतना को बुलाया। पुतना तो बड़ी भयंकर राक्षसी थी, उसके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो तिनका ऐसा कोई उठाएगी ऐसे किधर भी वो मंत्र बोलेगी तो तिनका विमान बन जाएगा, एरोप्लेन, उस पर बैठकर वो जहां चाहे वहां जा सकती है, जाएगी जहां पर वहां पर नवजात शिशुओं का रक्त पिएगी, इन्फेंट बेबी का रक्त पे, ये उसका उसके कार्य थे। तो उसको बुलाया, बोला जाओ और दो कन्या को उठा के ले गया। पुतना आकाश से मार के से आई विंध्यचल, मतलब यूपी से महाराष्ट्र में आई, क्योंकि विंध्यचल पर्वत महाराष्ट्र में है। आई वहाँ पर और ये बच्चियाँ खेल रही थी पहाड़ पर, वहाँ पर सीधे उनको उठाया आकाश के आकर ऊपर के ऊपर ही उठाया और चली गई वो। तो विंध्याचल ने देखा, अरे मेरी कन्याओं को ले जा रहा है। ब्राह्मण ने बोला, तुरंत आ जाओ यहाँ पर, ऐसे मंत्र बोलो कि इसके शरीर में अग्नि उत्पन्न हो, अग्नि तत्व को प्रकाशित करो उनके शरीर में। तो ब्राह्मण तुरंत बैठ गया। ऐसे हमारे इतिहास में और हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे ब्राह्मण और ऐसे यज्ञ हुआ करते थे। एनीथिंग व्हाट यू वांट कैन बी डन। तो उन्हें ऐसे मंत्रों की आहुति दी कि पुतना के शरीर का जो अग्नि तत्व है वो ऐसा प्रज्वलित हो गया, वो जलने लगे ऐसे अग्नि के आँच से। तो उड़ रही थी आकाश में बहुत तेजी से, उसको मथुरा पहुंचना था, उसको कंस को देना था दोनों कन्याओं को। तो महाराष्ट्र के अंदर ही एक कन्या को छोड़ दिया, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाई और ज़्यादा, एक हाथ में थी एक हाथ में पकड़ी थी दोनों को। तो ये हाथ में से वो कन्या फिसल गई, वो विदर्भ में गिर गई। विदर्भ यानी कहा नागपुर, नागपुर यानी भविष्य में आगे जाकर वहाँ पर रुक्मिणी का जन्म होने वाला है, कौंडिन्यपुर। तो वो उस समय रुक्मिणी के आगे रुक्मिणी होने वाले, उसके पिताजी वहाँ पर राजा थे, तो उनको वो मिली। तो उन्होंने उनका 5 साल तक पालन किया चंद्रावली का। फिर पूर्णमासी आई तो भीष्मक ने उनको पूर्णमासी को दिया, और वो जाकर उन्होंने चंद्रभानु महाराज को दिया, और वो चंद्रभानु महाराज की कन्या बनी चंद्रवाली। रिठोरा गांव है उसका, रिठोरा। फिर ये आगे उड़ रही है, मैं आपको थोड़ा सा उपाख्यान बताया। फिर वो एक लड़के गिर गए, उसको आगे लेकर उड़ रही है बहुत तेजी से, अग्नि बढ़ रही है। तो ब्रज में वो पहुंची गई, लेकिन वो कंस तक नहीं पहुंच पाई और उसने छोड़ी, मतलब गिर गई वो अपने हाथ से। तब वो करीब करीब, हमारा जो थोड़ा रिसर्च यहाँ वहाँ करते रहते हम लोग, उसका करीब करीब वो 345 दिन की थी एज में, यानी टॉडलर बेबी, इधर उधर रेंगना सब था, छोटी सी बेबी थी, लेकिन 1 साल की छोटी सी कम थी। तो वो यहाँ पर यमुना जी में गिरी, और जैसे ही वो यमुना में गिरी तो उनको स्वीकार करने के लिए एक बहुत सहस्त्र दल स्वर्ण प्रकाशित कमल वहाँ उत्पन्न हो गया, उसके मुलायम गद्दी जैसे वातावरण में वो आ गई, यानी प्रकट हो गई या प्रवेश कर गई। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नंद बाबा और विश्वानु महाराज दोनों को संतान नहीं है, बहुत उम्र हो चुकी है। तो साधु लोग बताते हैं आप यमुना किनारे जाके रहो तो यमुना जी की कृपा से आपको संतान होगी। तो दोनों ने शिफ्ट किया हुआ है, बरसाने से रावल विश्वानु महाराज आए हैं और नंदगांव से शिफ्ट होकर गोकुल में नंद बाबा आए हैं, और यहाँ पर नंद बाबा को कृष्ण बलराम प्राप्त होते हैं यथावकाश, और वो आनंद हो रहा है गोकुल में, उनका जन्म हो चुका है अभी अभी, मतलब बलराम जी का जन्म होने के बाद श्रावण पूर्णिमा के 8 दिन के बाद कृष्ण का जन्म हुआ है, अभी 15 दिन ही हुए हैं सब समारोह होते होते। और वृषभानु महाराज अपने यहाँ पर जो अपने मंदिर देखा, वो वृषभानु महाराज का रावल का महल है, यहाँ पर वो रहते थे। तो यहाँ से वो रोज यमुना जी में स्नान करते थे, उनका यहाँ पर भी कुंड था। भोर के समय जब भी वो गए स्नान करने के लिए तो उन्हें देखा कि उसमें अंधेरा होना चाहिए उस समय, तो उस समय तो बहुत सुंदर स्वर्ण प्रकाश सब जगह फैला हुआ था, गोल्डन लाइट, और नदी के जल से वो आ रहा था। तो वो नदी के में प्रवेश किया और देखा कहाँ से आ रहा है, और पास में गए तो देखा नदी से नहीं आ रहा है, उसमें कमल है स्वर्ण कमल, उसमें से आ रहा है। और पास में गए देखा कमल से भी नहीं आ रहा है, तो कमल में एक सुंदर कन्या है कृष्णांगी कोमलांगी, उसके शरीर से वो स्वर्ण आभा आ रही है। और वो अचंभित हो ही रहे थे, अरे ये तो चमत्कार है पुराने सर, इतनी सुंदर कन्या, इतने सुंदर उसके क्या कहते हैं उसके लिम्स यानी अंग उनके, हाँ हस्तकमल उंगलियाँ चरण कमल और उनके कोमलांगी शरीर देखकर मोहित हो ही रहे थे। उसने में आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पिछले जन्म में सुचंद्र राजा थे और आपकी पत्नी कलावती देवी थी, और आप दोनों ने मिलकर 12,000 वर्ष तक तप किया था केवल पेड़ के गिरने वाले सूखे पत्ते खाकर, तब मैं प्रकट हुआ था और मैंने आपको कहा था कि क्या आप वरदान चाहिए, तो आपने कहा था कि, तो पहले सुतेंद्र महाराज ने कहा था कि हमें मोक्ष दे दो, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, लेकिन वो सुनकर कलावती जी नाराज हो गई, उन्होंने कहा हमारे होते उनको मोक्ष का वरदान दे रहे हो, हमारा क्या होगा। तो लिखा है शास्त्र में कि ब्रह्मा जी डर गए, क्योंकि कलावती देवी महासती थी, मैं उसकी कहानी आपको थोड़ी देर बात बताता हूँ, महासती थी, और महासती जो थी ना, यानी जो सतीत्व पतिव्रत्य जो होता है, चैस्टिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, ये हमारे वैदिक धर्म के 7 खंभों में से एक खंभा है, एक स्तंभ है, वो वैदिक धर्म का आधार। प्रथम स्कंद गाय है, दूसरा स्तंभ ब्राह्मण है, तीसरा स्कंद स्तंभ वेद है, चौथा स्तंभ जो है वो सती नारी है, पांचवा स्तंभ सत्यवचनी पुरुष, छठवा स्तंभ लोभ रहित पुरुष, सातवां स्तंभ दानशील पुरुष। तो सती के नाराज होने से ब्रह्मा डर गए कि कहीं मुझे शाप न दे दें, तो उन्होंने कहा कि माफी चाहता हूँ, अभी आप तुरंत मोक्ष नहीं दूंगा उनको, क्योंकि उनको दोनों को उन्होंने वरदान दिया कि भगवान की अंतरंगा शक्ति आपकी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा आप ऐसा वरदान देते हो, इनको मोक्ष का देते हो, हमें दोनों को मिलकर कन्या का वरदान दो, पुत्र होगा कैसा अगर इनको मोक्ष मिलेगा, तो पुत्र या पुत्री जो भी। तो ब्रह्मा जी भी हड़बड़ा जाते हैं, मतलब कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप दोनों जब तक द्वापर युग में राधा रानी का जन्म का समय आएगा तब तक आप मेरे धाम में रहो, ब्रह्मा लोक में रहो, आनंद करो वहाँ पर, और जब वैवस्वत मनु के 28वां द्वापर आएगा, जब राधा रानी अंतरंगा शक्ति का अवतार का समय आएगा, तब आप यहाँ अवतार लेना और फिर आपको पुत्री प्राप्त हो जाएगी, ये उसका इतिहास है। तो ब्रह्मा जी बता रहे जो आपने चाहा था भगवान की अंतरंगा शक्ति अपनी पुत्री के रूप में प्रकट हो, यही वो कन्या आज आपके सामने प्रस्तुत है, इसको आप घर ले जाओ। तो भोर के समय राधा रानी अवतरित हुई है यहाँ पर, तो इसके राधा कृष्ण के 15 दिन के बाद में हुआ है। तो राधा रानी कृष्ण से बड़ी भी है, ये भी सत्य है, और राधा रानी कृष्ण से छोटी भी है, ये भी सत्य है, बोथ आर ट्रू। यहाँ के हिसाब से वो छोटी है और एक्चुअल हिसाब से वो बड़ी है, 345 दिन, ठीक है। तो वो घर ले गए उनको, और घर ले गए तो बहुत आनंद हुआ, इतनी स्वर्ण प्रकाशित, इतनी कोमलांगी, सुंदरांगी कन्या का तो रूप देखकर इतने मोहित हो गए। लेकिन कैसे बताना, भौतिक दुनिया में सुख दुख साथ साथ चलते हैं, कभी भी आप देखना, से खीर खाने को मिलेगी बहुत अच्छा, खाने को बैठेंगे धूल आ जाती है उसके ऊपर, तुरंत रीति हवा का झोंका आता है, धूल आती है, भाई खीर खाऊं कि धूल खाऊं, खीर खाऊं कि धूल खाऊं, ऐसे हो जाता है। कोई भी एक चीज़ यहाँ पर है ना भौतिक दुनिया में, जब तक हम हैं वो प्योर आनंद कभी होता नहीं है, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो इनका दुख क्या है, इतने समय के बाद में इतनी सुंदर, इतनी दिव्य कन्या प्राप्त हुई है, इतनी दिव्य तरीके से अवतरित हुई है, उनको अयोनिज कहते हैं, मतलब उनकी गर्भ से नहीं आई, वो प्राप्त हुई उनको कृपा से, लेकिन वो आंखें बंद है उसकी, आंखें नहीं खुल रही, मुख से कुछ बोल नहीं रही है, बच्चा कैसे रोता है ना, नो आवाज, और कान में वो ऐसा कुछ खिलौना बजा रही है तो नो रिस्पॉन्स, मतलब ना सुन रही है, एक बहरी भी है, गूंगी भी है और अंधी भी है। अभी खुशियां कैसे मनाएं बताइए आप, उनको तो बड़ा उत्सव मनाने का दिल है, लेकिन वो चिंता में बढ़ गए कि ऐसे कैसे हम उत्सव मनाएंगे, ये तो एक तरह से अशुभ है। उतने में हमारे नारद मुनि जो है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि सारे देवता और सारे देव ऋषि जब भी भगवान और भगवान की सखियाँ राधा रानी अवतार लेती है ना, तभी वो अलग अलग रूप धारण करके आते दर्शन करने के लिए बाल रूप का, क्योंकि बाल रूप गौलोक में नहीं होता है, गौलोक में 16 साल के 16 वर्षीय किशोर अवस्था में रहते हैं, 16 ईयर ओल्ड यूथ। तो नारद मुनि को पता था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी अवतार लेने वाली है, तो उन्होंने अपना चार्ट बनाया था, एक हमारी बात अभी भी साइंस है, वो एक चार्ट बनाया था, उसमें वो GPS लोकेशन बनाया था कि ये इधर है वो, जिसको हम समझ सकते हैं आज के तारीख में GPS के नाम से। तो ये साइंस अभी अभी का नहीं है, तो बहुत पुराना साइंस है ये, इस तरह की जो सिद्धियाँ थी वो आम ब्राह्मणों के पास थी उस समय, मैंने कल बताया ना आपको, और रमेश बाबा जी महाराज जब घर से भाग गए थे तभी भी ये साइंस था, उन्होंने वो क्या है ना, वो स्थान का वो चार्ट बनाया था और बताया था कि ये इधर से इधर गया हुआ है, इधर जाओ आप, उधर ही मिले थे उनको। तो नारद मुनि चार्ट बनाया था और ढूंढते 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 बराबर वो रावल में वृषभानु महाराज के घर पे आ गए और पूछते हैं कि यहाँ पर कोई कन्या का जन्म हुआ है क्या। तो अभी सभी लोग थोड़े से खुश भी हैं और थोड़े नाराज भी हैं। तो कीर्ति माता जी यानी राधा रानी की माता जी कीर्तिदा देवी जो पहले जन्म में कलावती थी वो कहती है कि हमारे यहाँ पर कोई कन्या नहीं हुई। उनको संकोच है ना कि भाई अगर बताएंगे तो बोलेंगे दिखाओ, दिखाएंगे तो दिखेगा कि अंधी बहरी और गूंगी है, तो थोड़ा सा दुख होता है ना। तो नारद मुनि बोले अरे मेरा गणित तो रॉन्ग नहीं हो सकता है, लेकिन घर की माता जी कह रही है कि नहीं हुई तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ। बोले कि बालक वगैरह है आपको कोई कन्या नहीं तो कोई बालक है तो सीधा माँ को आगे करते, बोले ये हमको लड़का है, लड़की नहीं है। हाँ नहीं है, सोचते सोचते आगे चले जाते हैं। उतने में कुछ और गोपियाँ आती हैं, वो कहते हैं अरे माता जी आपने उनको मना कर दिया, वो तो बड़े सिद्ध ऋषि हैं, वो क्या पता उनकी कृपा से आपकी कन्या आँखें खोले, मुँह खोले, कान से सुनाई पड़े। ये साधु बहुत चमत्कारी होते हैं, इनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता है, जाओ जाओ जाओ। तो माता जी ने कहा जाओ उनको दोबारा लेके आओ। तो गोपियाँ भाग गई पीछे उनके, बोले महाराज जी है कन्या का जन्म हुआ, आ जाओ आ जाओ। तो भाग के आ गए वो, क्योंकि उनको पता था कि उनका गणित रॉन्ग नहीं हो सकता है। फिर भी वो सोच रहे थे ऐसा कैसे हुआ, भाग के अंदर आई और फिर वो बोले महाराज जी हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा स्थिति हमारे घर में, अभी हमको दुख हो रहा था आपको बताने में, लेकिन अभी आप साधु हैं त्रिकालदर्शी हैं सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करना, कोई संकोच मत करना, उत्सव मनाने के लिए धूमधाम से जन्मोत्सव मनाना, एक ही खाली काम करना, उसमें नंद बाबा रोहिणी यशोदा कृष्ण बलराम को जरूर निमंत्रण देना, वो देने वाले हैं, लेकिन फिर बोल रहे उनको मत भूलना, क्योंकि साधुओं को और एक पता होता है इतिहास वर्तमान और भविष्य सब पता होता है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं उनको। तो वो बोले अभी जाओ तुरंत तैयारी करो, सब लोगों को ना युक्ति से तैयारी करने के लिए भेज देते हैं और वो कमरे में पलने में केवल राधा रानी और अकेले बच जाते हैं, उनको वही चाहिए था कि लेट मी हैव अ दर्शन अलोन। तो जैसे सब लोग चले जाते हैं तो राधा रानी तुरंत 16 साल की युवती होकर दर्शन देती है उनको। बोलो नारद मुनि महाराज की पूरे 16 वर्ष की उम्र में पूरे श्रृंगार के साथ दर्शन देते। नारद मुनि बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, उठते हैं गिरते हैं उठते हैं गिरते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं, रोमांच खड़े होते हैं, कंठ गदगद होता है, फिर गिरते हैं फिर प्रणाम करते हैं। क्या उनको हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, इतना आनंद हो रहा है उनको। फिर संभल जाते हैं कुछ देर के बाद और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपको आपके अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो वो कहते हैं कुसुम सरोवर चले जाओ। तो उसके आगे की कथा आपको मैं गोवर्धन परिक्रमा में बताऊंगा, कुसुम सरोवर में फिर क्या हुआ। तो ये इसका पीछे रहस्य ये है कि जब भी पृथ्वी माता कंस आदि राक्षसों के आतंक से परेशान हो गई थी तब वो भगवान के पास गई थी और गरुड़ संहिता में लिखा है कि क्षीर उदक शाही विष्णु जो उनके पास वो लोग सब गए थे ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, वो क्षीर शाही विष्णु बाहर आए और उनको गौलोक लेके गए और गौलोक में उनको श्री हरि का दर्शन हुआ। वहाँ पर भी कई चमत्कार हुए, वो नहीं बताऊँगा आपको भी, लेकिन उसके बाद में श्री हरि ने कहा पृथ्वी को चिंता मत करना मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा और आपके सारे भार जो हैं असत्य और पाप के राक्षसों के रूप में जो प्रकट हैं वो सब हरण करूँगा। और सब उनको उन्होंने क्या किया ना, जितने भी देवता थे वहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे ना, पृथ्वी माता गौ माता के रूप में ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब देवता वहाँ पर पहुँच गए, सभी लोग आतंकित थे ना, तो सबको ड्यूटी दे दिया कि तुम भीष्म बनो, तुम दुर्योधन बनो, तुम ये बनो, तुम पांडु बनो, तुम पर्जन्य बनो, तुम सुरसेन बनो, सबको विस्तार में वहाँ दिया है गर्ग संहिता में पूरा डिटेल में कौन कौन किसको बनना है। फॉर एग्जाम्पल शिव जी को कहा आप अश्वत्थामा बनो, उनका अंश अश्वत्थामा है, एक रोल कर रहे हैं वो, सब भगवान के भक्त हैं वो। दुर्योधन भी बलराम जी का बहुत प्रिय शिष्य था पुराने जमाने में, मतलब पिछले युग में, उनको भी आशीर्वाद दिया है बलराम जी ने आप मेरे प्रिय शिष्य बनकर अवतार ले लो, वो दुर्योधन बन गए। एनीवे तो वो सब डिक्लेयर कर रहे थे, उतने में राधा रानी भी साथ में उनके दर्शन दे रही है और ये सब सुन रही है कि मैं जाऊँगा अवतार लूँगा ये करूँगा वो करूँगा, तो वो बेहोश हो गए उधर। तो कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, सखियों ने उनको जगाया और कहा कि क्या बात है बोए बेहोश क्यों हो गए, अरे आप ही पूछ रहे हो आप ही घोषणा कर रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, तो आपके होने वाले विरह से मैं परेशान हूँ, कि आप जाएंगे छोड़ के मुझे। तो कृष्ण कहते हैं किसने कहा कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, मैं तो आपके साथ जाने वाला हूँ। तो आप चाहते हो कि मैं साथ आऊँ, लेकिन मैंने आने वाली आपके साथ, क्योंकि जहाँ पर वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है और यमुना जी नहीं है, वहाँ पर मुझे एक कण का भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। यत्र गोवर्धनो नास्ति ना यत्र यमुना नदी, यत्र ना वृंदावनो न सुखम मम प्राप्ति ही, मुझे कोई सुख नहीं मिल सकता है वहाँ पर। अरे देवी, मैं आपके मंतव्य को जानता हूँ पहले से कि आप इसके बिना रह सकती नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से ही इनको घोषणा करने के पहले से ही गोलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा पृथ्वी तल पर भेज दिया है जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है, अनेक पृथ्वी तल है, अनेक धरा लोक है, वसुंधरा लोक है। तो जिस जगह में जाने वाला हूँ उस जगह में ऑलरेडी मैंने वृंदावन धाम को 84 कोस में भेज दिया है, और पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन को भी भेज दिया है। तो कहते फिर मैं आऊँगी, लेकिन फिर भी मेरे और एक शर्त है। हो सकता है मैं बाद में आऊँ, आप पहले आए, ये आपका जो प्लानिंग है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पहले आने वाले हो और मैं बाद में आने वाली हूँ, तो जहाँ पर भी आने वाली हूँ आपको देखे बिना मैं आँखें नहीं खोलूँगी, मैं आपको ही देखना चाहती हूँ। आपके ध्वनि के बिना कुछ नहीं सुनूंगी, जब आपके ध्वनि होगी तो मैं कान खोलूंगी। हाँ, और क्या बचा? मुंह है ना, मुख मतलब रोना जोना जो भी कुछ है वो आपके दर्शन के बाद ही होगा, इसलिए वो आंख बंद करके बैठी हुई थी। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण के लिए हैं, वो सारी इंद्रियां जितनी बनी हुई है वो कृष्ण के लिए ही बनी हुई है, उनका विषय कृष्ण है, उनका ऑब्जेक्ट कृष्ण है, और कृष्ण के लिए उसको समर्पित करना चाहिए। हम जब उन चीज़ों को दूसरे लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं, दूसरी चीज़ों को सुनते हैं, तो हमारे चित्त जो है वो उसमें बंटवारा हो जाता है। चित्त का कुछ हिस्सा माया के कब्जे में जाता है और छोटा मोटा हिस्सा कृष्ण के कब्जे में, या तो पूरा ही हिस्सा माया छीन लेती है, क्योंकि माया का स्वभाव कैसा है ना, पैसा नहीं लेती है एक हाथ ऐसा, वो निकटस्थ तो माया तोरे झपट या धोरे, ऐसा पकड़ के पूरा ले लेती है। वो ऐसा बोलेंगे नहीं, 50% 20% ऐसा नहीं होते हैं, जब पकड़ते तो पूरा ही पकड़ते, इसलिए हमको देना है तो पूरा ही देना है कृष्ण को। जब देते हैं पूरा कृष्ण को तो कृष्ण हमको माया से बचाते हैं। हाँ, मामे वही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, जब आप मेरे शरण में आओगे तो ये दैवीयशी गुणमयी जो मेरी माया है वो आप कुछ नहीं कर सकती। आपको ऐसे बड़े बड़े होते ना आलसेशन कुत्ते, वो अगर भोंकने लगते ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है मनुष्य के अंदर जो उसे आप बचा सकते हो, लेकिन अगर मालिक ने कहा हे टॉमी हे, तुरंत शांत साइड में बच जाएगा। इतना बड़ा तो आपके लिए क्या कहते हैं उसको, अनसरमाउंटेबल, यानी आप उसको लांग नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो वैसे भगवान की माया है दैवीयशी, दैवीयशी गुणमयी मम माया दुरात्यया, ऐसी दुरत्य यानी इम्पॉसिबल टू क्रॉस ओवर, लांग नहीं सकते। लेकिन कृष्ण के शरण होते ही, क्योंकि कृष्ण की, कृष्ण मायाधिपति है ना, माया अध्यक्षेण प्रकृति सूरते सचराचरम, गीता में भगवान कहते हैं कि माया का मैं अध्यक्ष हूँ, निर्माता हूँ, नियंत्रक हूँ, सब कुछ हूँ, और मेरे आदेश से माया चलती है, मेरी अंतरंगा बहिरंगा शक्ति है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर माया से बचना है ना तो इंद्रियों को केवल कृष्ण के विषय में लगा दो। अथक कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियी, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एहि एहि स्मृत यदा। ये 5 इंद्रियों में से एक, वो श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति सामृत में कि जिह्वा के माध्यम से अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और जिह्वा के माध्यम से भगवान नाम लेते हैं तो उसी से ही भगवान की प्राप्ति होती है, उसी से ही हम माया से बच सकते हैं। क्योंकि ये सब 5 इंद्रियों में सबसे पावरफुल जो है लाभ देने वाला वो है कान, और सबसे नुकसान करने वाला जो है इंद्रियों में से वो है जिह्वा। जिह्वेर लालसा एई इति उति धाय शिष्णुदर परायण कृष्ण नहीं पाए, ये जिह्वा ऐसी है ना वो आपको कृष्ण से बहुत दूर लेके जाती। तो उस जिह्वा से अगर हम प्रसाद ग्रहण करते, केवल प्रसाद भगवान का रोज भोग लगा के, शाकाहारी अन्न लसन प्याज चाय कॉफी के बिना बना के अगर भोग लगाते प्रेम से, उनको कोई भी महंगी वस्तु की जरूरत नहीं है, भोग लगा के ही पाते हैं, मुँह में केवल प्रसाद ही जाता है और कुछ बाहर का चीज जाता नहीं है हर रोज। अभी भगवान की ऐसी कृपा है हमारे जीवन में, अभी 1986 साल में हमने सब ये छोड़ दिया, तब से अभी 36 साल हो गए, प्रसाद के बिना कुछ नहीं खाते हैं। बड़ा भाग्य की बात है, हमारा कोई गौरव नहीं इसके अंदर, ये भाग्य है, पूरी कृपा है, और तब से भगवान नाम ले रहे हैं। अभी निरंतर तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत साल से चल रहा है, भगवान की कृपा है, यही करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो राधा रानी हमको अपने उदाहरण से बता रही है, उनको भौतिक दुनिया में आने में कोई रुचि नहीं है, उनको रुचि कृष्ण में है केवल। आप आ रहे हैं तो मैं आ रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। तो उस प्रकार से राधा रानी के केवल इंद्रिय नहीं, पूरा अस्तित्व, मति, चित्त, विचार, संकल्प, इच्छा, सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित है। तो एक कहानी भूलने के पहले भले बता देता हूँ कि कलावती महासती क्यों थी। तीन महासतियाँ थी वैकुंठ में, वो तीन महासतियाँ एक बार विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आई और उनको ना हाँ वो जय विजय ने रोक लिया उनको, तो बड़ा वो क्रोधित हो गई। तो लेट मी रिमेम्बर, हाँ तो वो प्रवेश करना चाहती थी, तो जय विजय नहीं, चार कुमार वहाँ पर आए और उन्होंने चार कुमार को प्रणाम नहीं किया। हाँ ये बात मुझे याद आई, चार कुमार जो है ना वो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये सबसे वयोवृद्ध ऋषि हैं, वो शिव से भी सीनियर हैं। शिव भगवान का जन्म उसके बाद में हुआ है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिव जी के बड़े भाई हैं वो चार कुमार। हाँ लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से अपने शरीर को केवल 4 साल का ही बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उसके बड़े होने के बाद में काम वासना शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है, ग्रंथियां ऐसे काम करती है कि सेक्स डिजायर उत्पन्न होती है, तो उनको उसमें पढ़ना ही नहीं था। तो योग बल से उन्होंने अपने आप को 4 साल का ही बना के रखा था, लेकिन वो करोड़ों साल के वयोवृद्ध साधु थे और वहाँ खेल रहे हैं। तो माताओं को लगा कि क्या उनको प्रणाम करना है, बालकों को प्रणाम करते हैं क्या, तो खेलते रहते, प्रेम करते, चुम्मा लेते उनका। तो उन्होंने प्रणाम में किया, तो भगवान की लीला थी, ऐसा नहीं कि वो प्रणाम के भूखे थे, उनको शाप दिया आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो पृथ्वी में बैठे हुए हैं, तो शाप ऑफ क्या है, वी आर एंजॉइंग। नो, ऊपर वाले लोग यहां पर विचार में भी नहीं आना चाहते, दे कांट इवन थिंक दैट वी आर हियर और वी हैव टू गो देयर। जैसे आपको बोला कि आपको अभी पाकिस्तान जाना है, तो वहां पर पाकिस्तान को जाए, अभी बोले कोई श्रीलंका जाना है आपको, तो पूरा इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड है वहां पर, हु विल लाइक टू गो टू श्रीलंका, नहीं हमको शिफ्ट होना है वहां पर, वो तो रावण का अच्छा धाम है, सीता जी वहां रही थी 1 साल। नो, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना है, बांग्लादेश नहीं जाना है और श्रीलंका नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर इतनी खराब कंडीशन है। आप बोलेंगे हमको यूक्रेन जाना है, जाएंगे क्या यूक्रेन में, खाली सीमेंट कॉन्क्रीट का ढेर है वहाँ पर, कुछ नहीं। अभी फिलहाल आपको दर्शन करना है, सीमेंट कॉन्क्रीट का बड़ा बड़ा ढेर मिलेगा आपको। उसी तरह से ऊपर के लोगों के, वैकुंठ लोगों के या स्वर्ग लोगों के लोग जो है वहाँ पर निवासी जो है, वो हमारे निवास स्थान के बारे में सोचते हैं कौन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो शरीर से बदबू आती है, वहाँ शरीर में खुशबू आती है, कोस एक कोस तक हर एक गोपी यानी हर एक स्त्री और हर एक पुरुष के शरीर के एक कोस यानी 2.5 मील के रेडियस में खुशबू आती है, और वो भी अलग अलग तरह की, आपके अंदर चंपा की आएगी, इनके अंदर गुलाब की आएगी, इनके अंदर पारिजात की आएगी, और जब 5-6 लोग इकट्ठा हो गए तो मिक्स खुशबू आएगी। इमेजिन हमारे यहाँ पर 5-6 इकट्ठा हो गए गर्मी में तो मिक्स खुशबू आती है। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सिचुएशन हियर। कभी कभी खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर। एक जमाना था राधा गोपीनाथ मंदिर में जब कीर्तन होता था ना, तो मेरा क्या है ना, दुर्भाग्य से नाक बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, तो मैं ना कीर्तन में समझो कभी लेट आ गया, मैं तो कीर्तन में बीच नाचता था, लेकिन कभी कभी जो लेट अंदर आ गया ना, तो आई कुड नॉट एंटर टेम्पल। क्यों बताइए, क्योंकि सैकड़ों लोग वहां पर, कम से कम 2000 लोग डांस कर रहे हैं गर्मी के मौसम में, उनका पूरा पसीना और बाश पैसा हवा में भरा हुआ है, एंड आई जस्ट कैनॉट एंटर बिकॉज आई जस्ट कैनॉट टेक इट। ये रियलिटी है मटेरियल वर्ल्ड की, ये सब देवता हमसे अधिक जानते हैं, तो क्योंकि वो खुशबू वाले देश में रहते हैं, वहाँ पर फूल है ना वो खिलते हैं ना, तो वो मुरझाते ही नहीं है, और खुशबू ऐसी रहती है क्या कहें आपको, इतने प्रकार के फूल, और क्योंकि खिलते ही हाल मुरझाते नहीं है, तो नए नए फूल बनाते रहते हैं ना, तो ओवर स्टॉक होता है, जब कोई नीचे अच्छी घटना हो गई तो वर्षा करते हैं, पुष्पवृष्टि, इसका एक पीछे रहस्य है ना। अभी देखो कृष्ण का जन्म हुआ पुष्पवृष्टि, कृष्ण ने बकासुर को मारा पुष्पवृष्टि, जन्म हुआ जन्मोत्सव हो रहा है पुष्पवृष्टि, सब जगह पुष्पवृष्टि, क्योंकि एक्सेस फूल है वहाँ पर, कोई उपयोग होना चाहिए अच्छा, तो पृथ्वी पर करते रहते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ पुष्पवृष्टि हुई, राम जी का जनेऊ हुआ या वामन देव का जनेऊ संस्कार हुआ तो पुष्प वृष्टि हुई, कई प्रकार के वर्णन है ऐसे। तो एनीवे मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम लोग एकदम प्रयत्न पूर्वक कंफर्टेबल होने का प्रयास कर रहे हैं उस तरफ देवता लोग ढूंढ कर भी देखना नहीं चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू बी कम्फर्टेबल ही, हम लोग नए नए स्प्रे लेते हैं और वो मैनेज करते हैं, फिर नए नए साबुन लेते हैं, नया नया शैम्पू लेते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हमें बदबू से बचे, लेकिन वो नहीं मुमकिन है। हाँ, अगर हमने कहा कि आपको सुबह से शाम तक यात्रा करनी है तो आप नहीं बच सकते उससे, दोपहर तक करेंगे तो आप बीच में स्नान करके फिर फ्रेश होके आएंगे, लेकिन अगर सुबह से शाम तक यात्रा करेंगे तो शाम को तो सत्य आपके सामने आ जाएगा, जीवन की सच्चाई। और एक ही शरीर से नहीं, सब जगह से बदबू आती रहती है। एनी वेज, तो वो तीनों माताएं बहुत परेशान हो गई, अरे व्हाई वी हैव टू गो टू मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया में मनुष्य बनने के लिए कौन जाएगा, वी डोंट वांट टू गो। उतने में विष्णु जी बाहर आ गए, तो विष्णु ने कहा ये शापवाप नहीं है, ये मेरी लीला है, मैं आगे जाकर अवतार लेने वाला हूँ, मुझे तीन महासतियों को आपके तरफ से जन्म देना है, तो डोंट वरी यू गो। तो वो जन्म लेती हैं, तो एक बनती है पार्वती की माता, उनका नाम है शायद मेनका या मैना, ऐसा कुछ नाम है, मेनका मैना, पर्वत नहीं, मैं माता की नाम की बात कर रहा हूँ, मैनाक हो सकता है, उसी के आसपास नाम है उनका। वो उन्होंने पार्वती को जन्म दिया, पॉइंट इज दैट, इसलिए पार्वती भी महासती है। दूसरी थी सीता की माँ, उनका नाम था सुनैना, जनक राजा की पत्नी थी वो, उन्होंने सीता को जन्म दिया। यानी उनको कैसा है ना कि ये सब जो महान व्यक्ति होते ना, ये तो दिव्य व्यक्ति हैं, दिव्य तरीके से अयोनिज रूप में जन्म लेते, लेकिन वो लौकिक रूप से भी किसी के माता पिता के माध्यम से आते हैं। जैसे यमराज और यमुना जो है वो सूर्यदेव और छाया देवी के माध्यम से आए हैं, ऐसे आते हैं। तो तीसरी जो थी वो कलावती बनी, और कलावती और सुचंद्र का विवाह हुआ, और वो भी किसी बड़े ऋषि ने प्रपोज किया था कि इनका विवाह करो। उन्होंने 12,000 स्वर्गीय वर्ष तपस्या किया, पेड़ के नीचे गिरने वाले सूखे पत्ते खाकर, तब जाकर राधा रानी का माता पिता के रूप में उनको प्राप्ति हुई। देखो ये जो महान लोग हैं ना, ये कलावती देवी, सुचंद्र, जो बाद में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा बने हुए हैं, बहुत महान जीव है ये। तो राधा रानी का जन्म हुआ ना, तो देखो राधा रानी का जो ननिहाल है वहाँ पर कौन कौन है, राधा रानी के माता का नाम कीर्तिदा है, हाँ, कीर्ति के माता का नाम है मुखाराई, मुखाराई, मुखारा देवी कह सकते हैं उसको। मुखारा देवी के पति का नाम है इंदुसेन गोप, और ये दोनों रहते थे मुखारा गांव। मुखारा गांव जो है वो राधाकंड के 1-2 किलोमीटर आगे हैं, वहाँ पर मुखारा देवी रहती थी। तो उनको भी दुख था वहाँ पर, कह रहे मेरे कीर्तिदा को बच्चा नहीं हुआ है बहुत दिन से। ये सभी माताओं का एक ही प्रॉब्लम होता है, जब तक उनको पुत्र नहीं होता है तभी उनको दुख होता है, उनको पुत्र हो गया तो उनके पुत्रों को पुत्र नहीं हुआ इसलिए वो भी दुख होता है, अरे क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, कुछ करो कुछ करो, हमें नानी बनना है, हमें दादी बनना है। फिर वो दादी बन गए, फिर बोले हमको पणजी बनना है, हमको पणती दे दो, पणती यानी ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्या सोचते हैं कि वो जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई ना आपको, उसको अंधेरे में दीपक के प्रकाश में देखना है और उस पर सोने की पणतियाँ का वर्षाव करना है, इससे कह दे कि मुक्ति प्राप्त होती है। तो वो पणती को पणती दिखाने में वो आलालायित रहते हैं, और समझो पणती हुई नहीं आपको तो क्या भगवतधाम नहीं जाएंगे आप, जा सकते हैं। अंत काले चमामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम पणती हो न हो न हो, ये मेरा एडिशन है श्लोक में। भगवान की प्राप्ति होगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये नानी माँ मुखारा देवी बहुत परेशान थी, जब उनको खबर मिली कि रावल में कीर्तिदा और मेरे जमाई को पुत्री हो गई है, तो वो इतनी बुढ़िया थी, बहुत बुढ़िया थी, वैसे ये भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन देखो उनके माता कितनी बुढ़िया होगी, वो इतनी खुश हो गई ना। देखो ब्रजवासी बहुत फिट होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं, 25 साल की उम्र में भी गोवर्धन परिक्रमा में ऐसा चलते ना कि क्या करें, क्यों प्रभु जी ले जा रहे हैं, ये भी कोई तरीका है यात्रा करने का। हाँ मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ, कल जाना है, हाँ जो भी अपने आप को समझते हैं कि मैं जवान हूँ, उनको अपना बुढ़ा होने का विचार सोच के जवानी में चलना है, और जो सोचते हैं कि मैं बुढ़ा हूँ उनको भी जवान होकर चलना है, और जिनको बहुत मुमकिन नहीं है उनको ऑटो रिक्शा में चलना है। लेकिन ये सोचो मत कि 22 किलोमीटर, बाप रे, हमारा तो वो जो बस रुकती है ना वहाँ से हमारा आश्रम 1 किलोमीटर दूर है, वो चलने में ही मेरी जान जाती है, और कल प्रभु जी 22 किलोमीटर चलाने वाले, अरे बाप रे, हे राम। मतलब हम ये बलराम को पुकारते, शक्ति दो चलने के लिए, तो आप बोलेंगे हे राम बचा लो यात्रा से। तो वो इतनी बुढ़िया इतना सुंदर नृत्य करने लगी, व्हेन यू कैन डांस व्हेन यू आर फिट, है ना। अभी हम नृत्य करने वाले हैं, यात्रा में हमेशा कथा ही लंबी चलती है तो नृत्य करने का समय नहीं मिलता है। तो एनीवेज, तो वो नृत्य करते करते इतनी इतनी एक्साइट हो गई ना, उसने एक पड़ा हुआ बैलगाड़ी का एक चक्र था बड़ा, हाँ बड़ा हुआ उसको उसने उठाया। उठाने के लिए शक्ति लगती है, आप अभी भी कभी देखो कोशिश करके, अब हिला भी सकते नहीं उसको, इतना बड़ा होता है बैल का, गाड़ी का। उस समय तो द्वापर युग की बैलगाड़ी थी वो। उसने उठाया और वो ऐसा ना, आपने यहाँ ब्रिज में देखा नहीं होगा, बहुत लोग ना एक थाली लेते हैं, थाली स्टील की, और उसको ऐसे ऐसे घुमा के डांस करते हैं, हाँ बहुत सुंदर डांस करते हैं, और डांस भी करते हैं और वो घूमते भी रहता है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाता है, ऐसे ही बहुत सुंदर। तो उसने ना वो बैलगाड़ी का जो पूरा पहिया है उस पर दीपक रखे, आरियों पर, स्पोक्स के ऊपर दीपक रखे लाइन से, और वो लगकर उसको घुमा के नृत्य करने लगी। वो राधा रानी के बर्थडे की कहानी है ये, जिस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव यहाँ पे हो रहा है उस समय मुखाराई में मैया सभी गोपियों को लेकर, और उनको देखकर सबको प्रेरणा हो गई, उन्होंने भी अपने अपने बैलगाड़ी के पहिए उठाए और सब लोग उसको उठाने में सक्षम थे, पॉइंट टू नोट। हाँ, उठाया, सब में दीपक लगाया और वो डांस करने लगे। उसको कहते हैं चरकुला नृत्य, आज भी वो ब्रज में बहुत फेमस है, उसकी एक साल में 1-2-3 बार कॉम्पिटिशन भी होती है, उसके ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस भी होते हैं, चरकुला नृत्य क्लासेस कई जगह पर आपको दिखेंगे। तो आपको जब दिखाई पड़ेगा ना रस्ते में कभी चरकुला, तो आपको याद आएगा कि चरकुला मतलब आई नो यू नो, ऐसा आपको लगेगा कि ये मुखाराई देवी का ओरिजिन किया हुआ, चालू किया हुआ डांस है। तो 2-3 साल पहले जब नृत्य हुआ था, नंदगांव की लड़के को गोल्ड मेडल मिला था उसके अंदर चरकुला नृत्य में, लेकिन चक्र छोटा था, वो वाला नहीं बैल वाला। स्मॉल चक्र, स्मॉल दीपक और गोल गोल। तो ये भी उसका इतिहास है कि राजा रानी के जन्म के समय माता ने मुखाराई गांव में नृत्य किया। ठीक है, तो ये हुई रावल की कहानी। ये जो मंदिर है यहाँ पर राधा रानी की प्राप्ति हुई थी, राधा रानी का जन्मोत्सव भी यहाँ पर मनाया गया था। हाँ, राधा जन्म लियो, राधा जन्म लियो, अरे बाजे बधाई, राधा जन्म लियो, ऐसे बहुत सारे बधाई के गीत गाते हैं। कहते राधा रानी का जन्म हुआ ना तो भिखारी व्यक्ति धनीराम हो गया, भूखा व्यक्ति के घर में हलवा पूड़ी के ढेर लग गए। हाँ, ऐसे बहुत सुंदर वर्णन है राधा रानी के जन्म के दिन के। और राधा रानी के जन्म के दिन पे अभी प्राप्त हुई, हाँ अच्छा वो बताना भूल गया मैं, तो फिर उत्सव मनाने के लिए नारद मुनि ने उनको सबको भेज दिया, खुद दर्शन किया, फिर वो खुद चले गए कुसुम सरोवर की ओर, और यहाँ पर उत्सव का आयोजन हुआ। राधा रानी अभी भी पलने में पड़ी हुई है, आँख बंद करके पड़ी हुई है, और सब मेहमान आते हैं, कृष्णा, बलराम, रोहिणी, यशोदा, हाँ तो सब लोग अपने गले मिलने में लगे, स्वागत में लगे हैं। उतने में कृष्ण जो है ना वो ऐसे रेंगते रेंगते हुए उस कमरे में चले जाते हैं। कभी कभी होता है ना भाई, बच्चों को थोड़ा सा दुर्लक्ष हो जाता है, और बड़ी माताएं मिलने में बिजी होती हैं, बड़े प्रभु मिलने में बिजी हो जाते हैं, उत्सव में होता है ना, सबको गले मिलने में इतना आनंद आता है, मुझे को माता जी आई वो नहीं हमारी, हरि बोल, मैं आ गई रावल में, आई केम इन बिटवीन द यात्रा, हरि बोल। सो खुशी होती है ना कि भाई भक्तों को देखकर। तो उतने में कृष्ण बलराम, कृष्ण अकेले से चले गए उस कमरे में। तो दो प्रकार के वर्णन आते हैं, कृष्ण जैसे ही कमरे में प्रवेश किए ना, राधा रानी ने किल्लोल किया और मुख से किल्लोल किया और आंखें खोल दी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के शरीर से भी दिव्य सुगंध आती है, जब वो सुगंध राधा रानी के नाक में प्रवेश किया तो वहीं पर उन्होंने उनको दर्शन दिया, यानी आंखें खोल दी। दूसरा वर्णन आता है कि वो चले गए और जो रेंगता है ना बालक, वो कभी कभी देखो धोती पकड़ के खड़ा होता है ऐसे, पिताजी का कुर्ता का एंड पकड़ के खड़ा होता है, या माता की साड़ी का एंड पकड़ के खड़ा होता है, या तो कुछ पकड़ के टेबल को पकड़ के खड़ा होता है। तो ऐसे खड़ा हो गया और वो पलने की ओर खड़ा हो गया और स्पर्श किया राधा रानी, स्पर्श करते राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और किल्लोल किया। वो किल्लोल सुनकर सब लोग भाग के आए और देखा कि राधा कृष्ण साथ में है और राधा रानी खेल रही है, बोल रही है, सब कुछ सुन रही है। सो वेरी हैप्पी. तब उनको समझ में आया कि संतों की कृपा कितनी बढ़िया होती है. संत की बात सुनने पर जीवन में कल्याण होता है. हाँ, तो इनका भी कल्याण कैसे हुआ कि उनको पता नहीं था कि इनको भी आंखें कैसे खुलवाएं इसकी. तब तक संत तो चले गए थे, उन्होंने अपना नुस्खा बता दिया, वो चले गए. उत्सव मनाओ आप. उनको पता था कि कृष्ण आएंगे, ये कहानी उनको पता थी इतिहास वाली, तो कृष्ण आएंगे और राधा रानी की आंखें खोलेंगे, सब उनको पता था. तो ये भी कहानी यहाँ पर ही हुई है. फिर उसके बाद में कृष्ण के नामकरण के लिए गर्ग मुनि आए थे. गर्ग मुनि वसुदेव के कुल पुरोहित हैं. हाँ, और वसुदेव को अपने बालकों का नामकरण विधि करना ही था, क्योंकि एक गृहस्थ होने के नाते, वैष्णव होने के नाते सारे संस्कार करने चाहिए. किसी ने मुझे कहा प्रभु जी संस्कार के बारे में बताओ, तो संस्कार करना गृहस्थों का आदि कर्तव्य है अपने बच्चों के ऊपर. 16 प्रकार के संस्कार होते हैं. बच्चा गर्भ में आने के पहले भी गर्भाधान संस्कार होता है, वो तो हमको पता ही नहीं है, तो ऐसे ही आए ना, हमारे माता पिता ने किया, हम तो ऐसे ही आए. जन्मना जायते शूद्रा, जो संस्कार के बिना जन्म लेते हैं वो सब जन्म से शूद्र होते हैं. फिर संस्कारात भवेत द्विज, जब संस्कार होता है फिर वो द्विज यानी ब्राह्मण बन सकता है. जो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है तो विप्र बन जाता है, और फिर ब्रह्म की अनुभूति होती है. ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ऐसे हमारी यात्रा है. तो वृषभानु महाराज और वसुदेव जी, नंद महाराज, ये सब कुछ जानने वाले थे गृहस्थ, उनके गुरु थे, उनके आचार्य थे. सब लोगों ने मिलकर वो संस्कार की बड़ी अच्छी योजना बनाई थी. तो वसुदेव जी अभी परेशान है, क्योंकि उनके बच्चे तो हुए हैं लेकिन बच्चे कहीं और हैं, संस्कार तो कराना है. तो गर्ग मुनि को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, आप जानते हो आप तो आचार्य हो, त्रिकालदर्शी हो, तो आपको मेरे बच्चों का संस्कार करना है, लेकिन ये बताना भी नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, तभी गुप्त रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओपनली करेंगे तो कंस समझ जाएगा, अरे वसुदेव का कुल पुरोहित इनके बच्चों का संस्कार क्यों कर रहे हैं, मतलब यही वो बच्चे हैं वसुदेव के जिसके एक से मेरे मृत्यु होने वाली है, तो आकर हमला करेगा, बराबर लोकेट करेगा उनको. तो इन्होंने फिर गौशाला में नामकरण किया. उसका एक लंबा कथा है, कभी बताएंगे आपको. लेकिन यहाँ का कनेक्शन यह है कि जब भी गर्ग मुनि ने कृष्ण बलराम का नामकरण विधि बड़ा सागर संगीत अच्छी तरह से सेरेमोनियसली समारंभ पूर्वक किया, तो वो आउट ऑफ प्लान किसी को न बताए हुए तुरंत निकल गए गोकुल से, और रावल आए. और रावल आकर उन्होंने वृषभानु महाराज से मुलाकात की. तो वृषभानु महाराज बड़े खुश हो गए कि गर्ग मुनि आए अचानक बिना बताए. तो उन्होंने कहा आप चले, मुझे आपसे बात करनी है कुछ प्राइवेट. तो उनको जमुना किनारे ले गए अकेले में, और कहा तो वो उन्होंने कहा कि आप आए अच्छा है, आप हमारे घर में अभी कन्या का जन्म हुआ है, आपका आगमन बहुत हमारे लिए शुभ है, आप आशीर्वाद दीजिए. उन्होंने कहा पहले मुझे मिलने आप बाहर चलिए. तो बताया कि आपके घर में जो कन्या हुई है ना, वो कृष्ण की परम भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में आपके घर में उन्होंने अवतार लिया है, आ गई है. तो वो कहते हैं कि इसके लिए कोई अच्छा वर बताओ हमें. तो कहते हैं उसके लिए वही वर है जो नंद के घर में आया हुआ है, यही इसका वर है. तो कैसे शादी करेंगे इनकी? बोले इनकी शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी गुप्त रूप में ब्रह्मा जी करेंगे, ये भी सब बताया उनको. तो कृष्ण राधा रानी की शादी जो है ना, वो ओपन भी नहीं हुई है, गुप्त रूप में हुई है, 5 जगह पर हुई है. एक है भांडीर वन, दूसरा है संकेत वन, तीसरा है बरसाना, चौथा है नंदगांव, 5वां है वृंदावन. इसमें से संकेत वन और भांडीर वन, ये 2 जगह पर ब्रह्मा जी ने पौरोहित्य किया है, पुजारी का काम किया है, और दक्षिणा भी ली है प्रेम भक्ति की. बहुत सुंदर. तो ये सब रहस्य जो है वो गर्ग मुनि ने वृषभानु महाराज को बताए. तब उनको समझ में आया कि ये सब कनेक्शन क्या है, पुराने जन्म का, अभी का, इधर का सब कनेक्शन समझा दिया उनको. फिर उसके बाद में यहाँ से जब कंस का आतंक बढ़ा तो दोनों महाराजों ने शिफ्ट किया यहाँ से. मैंने आपको बताया था ना उस दिन, कहाँ बताया था, छठीकरा में बताया था कथा ये, कि भगवान दोनों गोकुल से नंद बाबा और रावल से वृषभानु महाराज दोनों यहाँ से शिफ्ट हो गए. वो बरसाने बस गए, ये नंदगांव बस गए. तो ये हुई हमारी मुख्य रावली स्थान की कथा. आगे हम जाएंगे ब्रह्मांड घाट पे. तो ब्रह्मांड घाट वो स्थान है, जमुना जी का ही किनारा है वो. ये सब गोकुल और मथुरा, बीच में जमुना है, क्रॉस करके आप गोकुल आएंगे. तो गोकुल के हिस्से हैं सब, एक है रावल, एक है गोकुल, एक है रमन रेती, एक है ब्रह्मांड घाट, ऐसे कुछ प्रधान प्रधान स्थान है, एक उखल बंधन भी आता है उसके अंदर, भगवान को बांधा था यशोदा मैया ने, 84 खंभा जहाँ पर वृषभानु नंद महाराज रहते थे और मीटिंग करते थे, नंद भवन भी है वहाँ पर, ऐसे बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ का पुतना का वध हुआ है, शक्टासुर का वध हुआ है, तृणाव्रत का वध हुआ है, ये सब गोकुल की लीलाएं हैं। तो ब्रह्मांड घाट में नंद बाबा के ये दो बालक खेल रहे हैं वहां पर, और कृष्ण जो मट्टी खा रहे हैं। आप लोगों के बच्चों ने कोई मट्टी खाई है क्या? किसी के बच्चे ने मट्टी खाई है? अक्सर सब बच्चे मट्टी खाते हैं, उसका मेडिकल कारण ये है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब उनके अंदर आयरन कम होता है तब वो मट्टी खाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि उसका ब्लड चेकअप करना चाहिए। एनीवेज वो कृष्ण का कारण नहीं था। मैं क्या डॉक्टर हूँ ना, बीच बीच में आपको थोड़ा टिप देते रहता हूँ, लेकिन वो कृष्ण का कारण नहीं था। उनको कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं थी, उल्टा वो सांवले रंग के थे। हाँ, तो वो मट्टी खा रहे, तो जाके ना बलराम जी ने कंप्लेंट किया मैया के पास, मैया लाला ने माटी खाई। तो ये बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि मैया हमेशा परेशान रहती है कि ये कोई खाएगा पिएगा कुछ करेगा, बीमार पड़ेगा, रोग होगा तो कैसे चलेगा, हमेशा दुखी रहती है और चिंतित रहती है उस विषय में। आज तो खबर आ रही है कि माटी खाई एक्चुअली। तो कृष्ण, ए माटी खाई तुमने? बोले नहीं, मैंने नहीं माटी खाई। ये दाऊ जो है ना, वो हमारी दो पार्टी में हम लोग खेल रहे थे, दाऊ का पार्टी हार गया आज, तो बड़े परेशान है वो, तो मुझे परेशान करना चाहते हैं, इसलिए आपको झूठ मूठ का बता रहे हैं। तो बोले मैया ऐसे नहीं है, कोई हम लोग गेम में हारे नहीं है, ये बहाना बना रहे हैं। तो क्या रे, सच बोल रहे ये? नहीं मैया, ये गेम हारे थे, ऐसा चलता रहा पूरा, ये बोल रहे ना, ये बोल रहे हाँ, ये बोल रहे ना। बाकी को पूछा लोगों को, इन्होंने माटी खाई? हाँ हमने भी दिखाया। तो बोले ये भी बलराम की पार्टी के। ऐसे भगवान बहुत देर तक झिकझिक करते रहे। तो बाद में फिर यशोदा माई बोली, अरे कभी तुमको टेस्ट ही करना पड़ेगा। हाँ वो बोलते, इतना क्यों बहस कर रही हो, मेरा मुंह खोल के देख लो, मट्टी है तो मट्टी है, नहीं तो नहीं है। और कृष्ण ने वास्तविक मट्टी खाई थी, और कृष्ण ही खुद बोल रहे हैं, हाँ हाँ देखो देखो खोल के देखो, क्या प्रॉब्लम है, हमने चोरी किया? बैग देखो, है क्या पैसा? देखो हमने कुछ चोरी नहीं किया, है पैसा उसके अंदर। ऐसा बोलते हैं कि सामने को लगेगा कि हाँ इतना ओपनली बोल रहा है, मतलब नहीं होगा शायद, छोड़ देगा शायद, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, चोरों का ये नेचर होता है। तो बोला वो खोल, मुख खोल। तो ब्रह्मांड घाट पे मैया आई है उधर, और वहां पर मुख खोल के कृष्ण के अंदर देख रही है, मुंह के अंदर। और मट्टी वट्टी देखना तो रह गया, उनको कुछ अजीब ही दिखा अंदर उसके। भाई वो देखने गई थी मट्टी, और देख रही कुछ और, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ उनके मुख के अंदर। और एक ब्रह्मांड का दर्शन नहीं हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन का, सृष्टि का दर्शन हुआ सारे लोगों के साथ। हाँ, और क्या हो रहा है उसके अंदर, अपने आप को भी कृष्ण के मुख के अंदर देखने के जो वीडियो है वो भी देख रही है। मतलब अभी वो बाहर से कृष्ण के मुख में देख रही है, लेकिन वो ब्रह्मांडों के अंदर उसका भी दर्शन है ना, उसका भी वीडियो चल रहा है ना, तो वो अपने आप को भी देख रही है कि वो कृष्ण के मुख में देख रही है, उसके मुख में। समझ में आया आपको? उसके मुख में अपने आप को कृष्ण के मुख में देखते हुए भी देख रही है। तो उनको लगा कि मेरा लड़का शायद बीमार हो गया, शायद कुछ उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, और मुझे कुछ अजीब दिखाई पड़ रहा है मुंह में उसके। तो क्या किसी की नजर लगी उसको, कोई राक्षस ने कुछ टोना कर दिया उसके ऊपर? तो बड़ा और बाद में धामिया उसके, अरे जिसके मुख में ब्रह्मांड होते हैं वो तो भगवान होता है, मैंने सुना है, मेरे बेटे के मुंह में ब्रह्मांड देख रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा भगवान है? नहीं तो दर्शन तो चालू है कंटिन्यूस, पर्दा बंद नहीं हो रहा है, दर्शन इज ऑन। तो नहीं, मेरा बेटा भगवान है। अचानक माता का वात्सल्य भाव चेंज हो गया, माता को लगा अरे मेरा बेटा नहीं है, तो भगवान है। और मैं तो आए दिन डांटते रहती उसको, डंडा दिखाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और क्योंकि यशोदा को ना अकेले को अधिकार था। अभी सब लोग माता पिता जैसे प्रेम करने वाले थे, नंद बाबा, बड़ी गोपियाँ, और मतलब उपनंद बाबा की पत्नी, ऐसे बड़ी गोपियाँ, रोहिणी, और बाद में उसके बाद में वो देवकी, बाद में वसुदेव, बाद में कुंती, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग सब वात्सल्य प्रेम करते थे। लेकिन इनमें से नंद महाराज तक किसी ने कृष्ण को डांटने का साहस नहीं किया। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा कि नंद महाराज भी डांट रहे हैं कृष्ण को शरारत करने के लिए, माखन चोरी करने के लिए। अकेली थी यशोदा डांटने वाली, और कैसे बोलती थी, है सड़क छाप लड़का, कुछ तुझे कोई शरम भरम कुछ है कि नहीं, कब से बाबा आके बैठे हुए हैं और तू सड़क में यहाँ पर मट्टी में खेल रहा है। हाँ ऐसे मतलब स्ट्रीट बॉय ऐसे पुकारते थे, और उनको देखकर भगवान कांपते थे और भाग के जाते थे। देखो तुम नहीं आ रहे हो, देखो हवा आ रहा है पीछे से, तो वो कृष्ण डर के मारे पीछे देखेंगे मैंने कि हवा है कि नहीं है, हवा कभी था ही नहीं, लेकिन वो कहते थे हवा आ रहा है पीछे से। फिर जब वो मैंने कहा था ना वो कंस के सेनापति लोग वो पत्थर हो गए, उसका मैंने आगे बताया नहीं, वो इतने बड़े पत्थर हो गए चार, तो यशोदा मैया उन पत्थरों पर बड़ा प्रेम करती थी। क्यों बताओ? क्योंकि कृष्ण जब शरारती करते थे ना शरारत, तो वो बोलते थे हवा आ रहा है देखो बड़ा बड़ा हुआ आ रहा है, तो वो पीछे देखते भी नहीं थे। तो वो उनका ना शास्त्र में लिखा है यशोदा देवी बड़ा प्रेम से उनका पूजन करती थी, अरे तुमने तो मेरे को इतना सहायता किया है हमारे लाला को संस्कार देने में। वो उसका कहते हैं हाउ बिलाऊ, वो चोरी चले गए थे अभी थोड़ा सा टूटे हुए बचे वहां पर। तो यशोदा देवी कह रहे मैं इतना डांटती हूँ, क्या अधिकार है मेरा भगवान को डांटने का? तो वो तुरंत है ना हाथ जोड़कर ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह ऐसे सब श्लोक बोलने लगी वो। तो कृष्ण भगवान को लगा यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये तो ज्यादा ही हो गया कुछ। आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन, क्योंकि मैं यहाँ पर सारा ऐश्वर्य वैकुंठ का छोड़कर वैकुंठ की भगवत्ता छोड़कर यहाँ पर माखन चुराने के लिए गोपियों का छाछ चुराने के लिए आया हूँ। I don't want my mother to start worshipping me. ये तो रसाभास हो गया। तो भगवान ने कहा बस हो गया, अभी लीला बहुत लंबी चली, बंद करो अपने मुंह को। बंद कर दिया। अब बंद करके क्या किया? अब तक माता पूरी मोहित है, bewildered completely। बंद करके ना ऐसा स्मिता हंस गया, very sweet smile। अभी वो मैं नहीं हंस रहा हूँ, कृष्ण हंस रहे हैं। देखो आप कृष्ण हंसते ही ना माता ने एक क्षण पहले जो भी कुछ कुछ समय के लिए देखा था, जिसके बारे में वो परेशान त्रस्त और बिविल्डर्ड थी, वो एकदम सब भूल गई। तुरंत अपने बच्चे को सन पे लगाया, बोला कुछ नहीं, मट्टी बिट्टी खाने का सब भूल गई वो। इमेजिन, क्यों खाते हैं भगवान मट्टी? ब्रज की मट्टी खाते हैं, द्वारका में मट्टी खाई क्या? वो कुंती देवी को कंप्लेंट आ रही है कि द्वारकाधीश मट्टी खा रहे हैं, ऐसा सुना है आपने कभी? नहीं है, ब्रज में ही खाई, क्योंकि ब्रज में उनके सखा और सखियां और राधा रानी गोपियां सब नंगे पैर चलते हैं, उनके चरणों की रज उनको चाहिए, इसलिए वो खाते हैं। भगवान का प्रेम है, साधारण चीज नहीं है। वही सब देखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भगवान एग्जैक्टली आपको ब्रज में क्या करना है बार बार दिखा रहे हैं। आना कैसे वो दिखा रहे हैं, रहना कैसे वो दिखा रहे हैं, किस भाव से आना है वो दिखा रहे हैं, क्या करना है वो भी दिखा रहे हैं। हर बार दिखा रहे हैं कि मैं यहां पर क्या करता हूं वैसे आप लोगों को करना है। अभी ब्रह्मांड लीला एक ही बार हुई है, एक ही बार वो लीला में भगवान ने मट्टी खाई है, लेकिन भगवान ने बीच में एक साल ब्रज के कोने कोने का कण कण रज खाई है। बताओ कैसे? ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान सभी ग्वाल बाल बने और सभी बछड़े भी बने, बछिया बछड़े बने। तो बछड़े बछिया क्या करते हैं जब खास खाते हैं? तो मट्टी भी खाते हैं कि नहीं? तो एक साल भर जो गौचारण वत्सचारण किया गया उसके बाद में भगवान को बड़ी गायों का भार मिला है। ये तो सब बचपन की लीला है। तो इसमें सारे ग्वाल जो बछिया है और बछड़े हैं वो सब कृष्ण हैं। वो सब गायों का दूध तो पिया, तो गायों को मातृत्व का आनंद दिया कृष्ण ने, लेकिन पूरे भूमि में ब्रज भूमि में कोने कोने में कण कण को चाटा है उन्होंने। हाउ मच ही लव्स द डस्ट ऑफ हिज डिवोटीज, ये उसका प्रमाण है। तेवा ब्रह्मांड घाट की लमा पर ब्रह्मांड बिहारी का दर्शन है, बहुत सुंदर जमुना का दर्शन है, बहुत सुंदर। भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय है, उनके चरणों के रज की वैल्यू क्या है, ये भगवान बताते हैं। फिर उसके आगे आप जाएंगे रमण रेती। हाँ, रमण रेती जहां पर कृष्ण बलराम रमण करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा रमण रेती। और रेती यानी जमुना जी की रेती में रमण करते हैं। और कैसे? नंग भड़ंग यहाँ का शब्द है। नंग भड़ंग का मतलब क्या है? नो वस्त्र, खाली कटी में कुछ अलंकार पहना हुआ है, बाकी सब अलंकार पहने हैं, लेकिन नो लंगोटी नो नथिंग, पीताम्बर भी नहीं। ऐसे रति वहाँ पर रेती में ये सब कुश्ती खेला करते थे सब ग्वाल बाल। आपको पता है ना ये कुश्ती का रहस्य क्या है? जब वो ऐसा उठाया था ना गोवर्धन को, तो मैया बोल रही अच्छा हुआ ना मैंने इतना स्पेशल गायों का स्पेशल पद्मगंधा लोटस फ्लावर के स्मेल वाला जो दूध पिलाया था ना, उसका जो मक्खन बनाया था ना, उसका जो दही बनाया था ना, इतना मेहनत किया था ना, वो देखो आज काम आ गया है ना। मेरा बालक गोवर्धन को उठाई खड़ा है, वो अपने आप को ऐसा शाबाशी दे रहे हैं सब लोग। तो बाल बाल बोल रहे हैं ये मैया लोगों को पता नहीं है, रियल नॉलेज तो हमको पता है, हमने उसको कुश्ती खेल खेल कर जो हर रोज हराया था ना उसी से वो मजबूत हो गया। हारना भी एक चीज़ होती है, हारने से भी बहुत शक्ति होती है। जब आप एग्जाम फेल होते हैं ना तो दोबारा पढ़ते हो तो डबल पढ़ाई होती है आपकी और नॉलेजेबल बनते हैं। हाँ, इसलिए अपयश को डरना नहीं चाहिए। अपयश यश की एक सीढ़ी है ना। तो बोल रहे हैं कि हमने जो रोज गौचारण में उनको कुश्ती खेल खेल कर जो हराया था उससे शक्ति आ गई है। हाँ, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन गोपन को सहाय। एक बड़ा ठीक, कोई बात नहीं, मुझे विषयांतर हो रहा है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ रमन रीति। तो ये ऐसे दो सभी ग्वाल बाल नंगे धड़ंग जो है बालक बनकर उधर, तो बालक वह समझे ना, ये दिस इज ऑल बिटवीन थ्री इयर्स, तीन साल के अंदर की कथा है। सब नंगे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कूद रहे हैं। तो वो दुर्वासा मुनि को पता चला था कि भगवान ने अवतार लिया है। बोले किधर है वो, गोकुल में है। तो गोकुल में ढूंढे ढूंढे आ गए, रमन रीति आ गए और देखा था ये सब नंगे नाच कर रहे हैं उधर, कुश्ती खेल रहे हैं। तो उनको लगा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, क्यों ऐसा लगा उनको। ऐश्वर्य भाव का जब थोड़ा बहुत प्रभाव होता है मन में ना, तो माधुर्य भाव की लीला समझ में नहीं आती है ना। समझो आप सडनली आप नरेंद्र मोदी को ऐसा वो कुंड में ऐसा मस्ती करते हुए देखेंगे और कोई लोग कहेंगे कि ये ना अपना प्रधानमंत्री है, तो आप कहते प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बच्चों को जरा खेल कर सकता है। जैसे हमारे होते ना सार्वभौम भट्टाचार्य, वो इंद्रधनु सरोवर में कैसे पानी के द्वारा खेल रहे हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग पंडित सब, अद्वैत आचार्य, दाढ़ी वाले बुड्ढे और पानी में खेल रहे हैं सब। चैतन्य महाप्रभु बता रहे देखो देखो ये बृहस्पति के अवतार हैं, ये राजा के राजपुरोहित है, देखो वैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा उन पर हो गई ना, इसलिए वे बालक बन गए वो सब। तो वैसे वो दुर्वासा मुनि इनको देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे भगवान। उतने में वो बालक जो है ना, वो सब बालकों को छोड़कर कृष्ण नंग भड़ंग इनके गोद में आके बैठे, और उनको आश्चर्य हुआ। और उतने में बालक ने लंबी सांस ली तो दुर्वासा मुनि उनके नाक में से उनके पेट में चले गए। ऑल ऑफ अ सडन, हाँ, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। इस वर्ल्ड में कभी क्या होगा ना, नोबडी कैन गारंटी। हाँ, वो दिन में सुबह सुबह उठा, ऐसा कुछ कर रहा था तो चश्मे पर बैठ गया मैं। हमारे यहाँ पर चश्मों का दुकान है इसलिए ऑन द स्पॉट नया चश्मा आया, लेकिन क्या कहें, What will happen, nobody knows. Be ready always, huh? And be happy also. तो फिर वो अंदर गए तो सारे अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया। वो ब्रह्मांड को देख कर हैरान हो ही रहे थे, उसमें उनको एक अजगर ने निगल लिया, पेट के अंदर चल रहा है सब कुछ ये। अब पेट के अंदर वो बड़ी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। अजगर के अंदर गए तो अजगर के अंदर भी बहुत सारे पहाड़ और लोगों का दर्शन हुआ। फिर वहां से बाहर निकले तो वो, अभी वो लंबा वर्णन है उसका, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि एक नहीं 100 कोटि वर्ष तक उन्होंने भगवान के पेट में निवास किया। और इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, इस लोक से उस लोक, फिर गौलोक तक चले गए, विरजा नदी को देखा, ब्रह्मांड का रद्र जहाँ वामन देव ने छिद्र किया था वहां से प्रवेश किया, वहां से बाहर निकले, वहां से अंदर आए, वहां से बाहर निकले, सर्प के योनि से, इसके मुंह से, उसके मुंह से, करते 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 100 कोटि वर्ष तक भगवान के पेट में ही निवास किया। और को पता नहीं भगवान के पेट में, वो तो सब विहार कर रहे हैं सब जगह पर। अचानक भगवान ने सब परत लंबा सांस बाहर निकाला तो वो बाहर आ गए, उधर रमन रीति में आ गए वापस सेम। और ये सब ना कुछ ही क्षणों में हुआ, समझ में आया कुछ आपको। 100 कोटि वर्ष का जो काम है वो यहाँ के कुछ ही क्षणों में हुआ। जैसे एक रात कृष्ण ने रासलीला रचाई, लेकिन 432 करोड़ साल तक भगवान ने रासलीला रचाई थी, एक साल में एक रात में समेट ली 12 घंटे के अंदर। वो तो भगवान की दिव्य लीला है। तो बाहर आए तब तक तो उनको पता चला था कि ये बालक नहीं है नंग बड़न, ये हमारे भगवान हैं। तो उन्होंने वहीं के वहीं रमन रीति में नंदनंदन स्त्रोत्र का रचना किया, वो गर्ग सहायता में पूरा दिया है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। नंदनंदन स्त्रोत्र का रचना किया, उसका पठन करने से इस जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में मैं अभी हमारे भक्त हैं श्री गोविंद राज कृष्ण को बताया हुआ कि वो श्लोक चाहिए मुझे, जो कौन सा राक्षस था वो बताइए, बताइए कौन सा राक्षस था, धेनुकासुर। जो अचानक उसका मूड बदली हो गया भगवान को देख के और वो स्तुति करने लगा, वो स्तुति का पाठ करने से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो धेनुकासुर ने जो भगवान की स्तुति की थी उसको करने से भी भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही नंदनंदन स्तोत्र की महिमा है, दुर्वासा मुनि ने वहां रचाई। फिर वो राधा रानी के दर्शन करने भी आए थे, आपने आपको मैंने बताया ऑलरेडी। और कौन स्थान बरसाए, रमन रति हो गया, ब्रह्मांड घाट हो गया, और उखल बंधन की कथा उखल बंधन में करेंगे। हाँ हाँ, दाऊ जी, दाऊ जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। उधर ब्रज है ना, वो उत्तर में नंदगांव बरसाना काम्यवन और आगे पलवल, वो सब उत्तर में है। दक्षिण में वृंदावन और वहाँ से बाद में गोकुल, और लास्ट दक्षिण में दाऊ जी, यानी नाम ही दाऊ जी है, बलदेव दोनों नाम उस जगह के नाम है, वो लास्ट में है, वो बलराम जी का स्थान है। वो आप देखेंगे वहाँ पर 6 फुट 6 इंच की सांवले रंग की मूर्ति है, और बलराम जी स्वयं वहाँ प्रकट हुए हैं, और वो रेवती जी के साथ दर्शन है उनका। एक दर्शन हमने किया रेवती के साथ, कहाँ किया था, वेरी गुड, गुड मेमोरी। और दूसरा करेंगे अभी हम आज, लेकिन उसमें रेवती जी थोड़ा साइड में खड़ी है यहाँ पर। तो क्या हुआ था कि कृष्ण बलराम दोनों चले गए ना, तो सब लोग व्याकुल हो गए यहाँ पर। तो भगवान ने बलराम जी को भेजा सांत्वना करने के लिए। तो मैं हरे कृष्ण मंत्र पहले बोलने के पहले ये बता रहा था कि नंदनंदन स्तोत्र की निर्मिति रमन रीति में दुर्वासा मुनि के द्वारा हुई है, उसका पठन करने से अनंत आध्यात्मिक लाभ होते हैं, मैं आपको वो भेज दूंगा। एनीवे, सो जब वो आने लगे, मतलब क्या ना, वो एक थे स्निग्धकांत मधुकांत, दो गोप थे, वो कॉन्स्टेंटली मथुरा वृंदावन के बीच में अप डाउन करते थे और नंद बाबा को अपडेट सुनाते थे, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी कंस का वध हुआ, अभी कोविलायपीठ का वध हुआ, अभी ऐसा हुआ, अभी द्वारका गए, द्वारका बनाए, अभी ये विवाह हुआ, वो नहीं हुआ, वो सारा जो स्टोरी है ना स्निग्धकांत मधुकांत का, वही गोपाल चंपू है। गोपाल चंपू इज मेड ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय स्निग्धकांत एंड मधुकांत, टर्न बाय टर्न, ओके। तो हाँ, तो जब भी उनको खबर पड़ी कि दाऊ जी आ रहे हैं, सुनंद महाराज ने क्या किया, 1,00,000 सुरभि गायों का दूध निकाला। 1,00,000 गाय कितनी होती है पता है आपको, देखा है 10 गाय देखा तो भाग गया आपका आज, और बाबा के गौशाला जाएंगे हम तो भोजन करने गए थे ना, वहाँ पर केवल 60,000 गायें हैं, 60,000, और 1,50,000 गायों का उनका अभी संकल्प है, बहुत कम दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ये बहुत विरला है, ओके। तो 1,00,000 गायों का दूध निकाला और एक कुंड बनाकर उस कुंड में रख दिया उसको, स्टोर। तो जब बलराम जी आए तो उसी दूध से उसी कुंड में खड़े होकर बलराम जी का अभिषेक किया, तो वो है क्षीर सागर कुंड। वो बलराम जी के आने के बहाने से और बलराम जी का अभिषेक करने के बहाने से क्षीर सागर को बलराम जी ने ब्रज में स्थान दिया। क्षीर सागर एक पवित्र स्थान है, हाँ, जहाँ पर विष्णु रहते हैं, लोकल वैकुंठ है वो। तो ऐसे 5 जगह पर क्षीर सागर प्रकट हुए हैं, तो वो एक स्थान है, और बलराम जी ने वहाँ पर निवास किया, फिर वहाँ पर सब लोगों को आनंद दिया, भगवान का मैसेज दिया। चैत्र और वैशाख 2 महीने में उन्होंने निवास किया था, और चैत्र वैशाख में जो रासलीला हुई है भगवान के एब्सेंस में, वो बलराम की रासलीला है, क्योंकि बलराम जी की अपनी अलग गोपियाँ थी, कृष्ण की गोपियों को सम्मान करते थे वो, और उनकी अलग अपनी गोपियाँ थी, जो नाग लक्ष्मियाँ थी, जो अनंत शेष भगवान को समुद्र के नीचे देखकर मोहित हो गई थी, वो भगवान से विवाह करना चाहती थी। तो भगवान ने कहा अभी हम ऐश्वर्य भाव में इसी लीला कर रहे हैं, जब हम बलराम बनकर आएंगे तो आप सबसे विवाह करेंगे। तो वो गोपियाँ भी, नाग लक्ष्मी गोपियाँ भी ब्रज में हैं, जो बलराम की सखियाँ थी, उनके साथ उन्होंने 2 महीने निरास नृत्य किया है, और बाकी गोपियों को, बाबा मामा को, सबको सांत्वना दिया है। तो उसके बाद वो लौट के चले गए, और क्या बचा है उधर ना, बहुत अद्भुत है वो, विशाल, इतना विशाल कुंड है ना, एक एक कुंड देखेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ कुंड जो है वो भगवान के होते हुए भगवान के सामने बने हैं, जैसे बलराम जी का अभिषेक करके वो कुंड बनाए हैं, क्षीर सागर कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड भगवान ने ही खुद बनाए हैं, लेकिन रत्न कुंड, मोती कुंड ये सब बाद में बने हैं। पीली पोखर पहले से ही बना हुआ है, पृष्ठवान महाराज का कुंड है, भानोकर के फोटो मैंने आपको भेजे आप सुबह, भानोकर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, कीर्ति कुंड ऑलरेडी कीर्ति मैया स्नान करती थी, तो कुछ कुंड पहले से ही थे और बाद में बाकी कुंड वज्रनाभ ने बनाए उस लीला के स्मृति में। तो दिव्य धाम का एक लक्षण है कि जहाँ जहाँ लीला होती है वहाँ पर वाटर रिजर्वायर बनाते हैं, जल का स्थान बनाते हैं ताकि लीला की महिमा वहाँ पर बनी रहती है, इस भाव से वो कुंड बनाते हैं। ठीक है, अभिराम प्रभु किधर है? ओके अभी कैसा है ना, एक बताना भूल गया आपको मैं, हम लोग इतने सुंदर जगह पर बैठे, देखो आप कितनी घनी पेड़ की छाया है, इतनी सुंदर सघन वृक्षावली है, कोटी कोटी रुपया भी खर्च करेंगे ना तो ऐसा वातावरण नहीं बन सकता है। ये टेम्परेचर कोई कह रहा था भी नेचुरल एसी है यहाँ पर, हाँ कथा में भी आनंद आ रहा है, कहने में भी सुनने में भी आ रहा है। थोड़ा सा ना मैं आपको विनती करता हूँ, क्योंकि पेड़ जो है ना ये अपने धाम के फाउंडेशन है, इनको देखते देखते ही चलना चाहिए, अप्रिशिएट करते करते ही चलना चाहिए, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इनको गले लगाना चाहिए, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा याचना भक्ति प्रेम याचना करनी चाहिए। यहाँ पर एक पेड़ है वो औदुम्बर है, दत्तात्रेय जी जो मैंने कहा था ना अनसुईया देवी के गर्भ से विष्णु ने जन्म लिया दत्तात्रेय, वो दत्तात्रेय इस पेड़ के पास रहते हैं। ये पेड़ बहुत पूजनीय है, इनके जो फल निकलते हैं ना वो बहुत उनका यज्ञ में क्रियाओं में बहुत महत्व है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री होगी उनका हम संस्कार करते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार सातवें महीने का संस्कार करते हैं, उस संस्कार में उसके फल लगते हैं, पंच वनस्पति माला में एक उसकी वो होता है। कहाँ गए हमारे वो शेफाली माता जी हैं किधर? हाँ लगाया था ना आपको वो, हाँ तो वो है, उसके आगे जाएंगे जरूर आप, वहाँ पर ना एक ऐसा पेड़ है मेन अश्वत्थ है लेकिन दूसरा पेड़ उसमें मिला हुआ है, और अश्वत्थ की जड़ें जो हैं उस पेड़ की शाखा के अंदर है, वो भी आप जरूर देखना। वहाँ पर मैंने कई प्रवचन किए हैं लेकिन शॉर्ट ग्रुप में, एडवांस पार्टी होते हैं ना ब्रह्मचारियों की, वहाँ पर हमने कई बार लेक्चर दिए हैं। ऐसा ये सुंदर, फिर यहाँ पर देखिए हम जिसमें बैठे हैं तो छोटे छोटे पेड़ हैं, जिसपे बैठे नीचे वो भी कदम का पेड़ है, आगे भी कदम का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर, सबका दर्शन कीजिए, गले लगाइए, प्रार्थना कीजिए, बहुत अनोखा समय आपको मिल रहा है, इसका लाभ लीजिए। और अभिराम प्रभु कहाँ हैं? हाँ काय यानी क्या टांगा से मतलब विसर लो गए? नहीं नहीं एनीथिंग एल्स आई एम मिसिंग?
नहीं यू हैव कवर्ड।
ओके अभी मैं हम लोग यहाँ से बस में बैठेंगे दाऊजी की में जाएंगे, दाऊजी के दर्शन करेंगे, वहाँ की कथा मैंने आपको बता दी। दाऊजी मंदिर में बहुत भगदड़ मच सकती है, आपको मेन मंदिर में बलराम जी का दर्शन करना है, सांवले रंग की 6 फुट 6 इंच की मूर्ति है, और कैसे खड़े मालूम है? ऐसे खड़े। इसमें क्या है, इसमें उनके हाथ में एक पात्र है उसमें वारुणी है और एक हाथ ऊपर आनंद में खिला हुआ है, क्योंकि उनकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी है रेवती, उसका मैंने आपको बता दिया था कि जो वारुणी देवी है ना, वारुणी देवी ये जब बलराम जी लीला कर रहे थे ब्रज में सांत्वना देने आए थे, तो वो जब लीला कर रहे थे यमुना किनारे, तो उस समय बलराम जी के आनंद के लिए वरुण देव ने अपनी कन्या वारुणी को भेज दिया कि आप द्रव्य यानी कि द्रव रूप बनकर एक सुंदर पेय बनकर आप पेड़ के पत्तों से प्रकट हो जाओ। तो ये वारुणी जो है ना वो ऐसा द्रव्य है, वो एक तरह से मधु की तरह है, हनी की तरह है, वो पत्तों से आता था और उसको इकट्ठा करके बलराम जी पिया करते थे और उससे उनको दिव्य नशा आया करती थी, उनकी आंखें गोल गोल घुमा करती थी। तो वारुणी का पात्र हाथ में है, हाथ ऊपर करके बड़े दाऊ दादा बड़े शान से खड़े हैं, हरे कृष्णा। उसके बाजू में मंदिर के पीछे रेवती दूर क्यों? क्योंकि वो ससुराल के भाव में है इसलिए, और उसके पीछे वो शिव सागर कुंड है, तो वहाँ पर बहुत समय नहीं बिताना है, दूर से भी देख सकते हैं लेकिन सब नीचे जाएंगे तो बहुत समय जाएगा, लेकिन तुरंत देखेंगे तो आगे हमको रमन रीति भी देखना है, उखल बंधन भी देखना है। ठीक है, बोलो एक बार जय जय श्री राधे। दिखाना है
बोला
आपने? मैं बोलता हूँ, अभी दो तीन काम है मुझे, एक मिनट यहाँ पर, अभी हम लोग 5 मिनट यहाँ पर डांसिंग कीर्तन करेंगे, उसके बाद में हम वहाँ जाएंगे जो यमुना जी के अंदर का जो था वो अभी कुंड के रूप में प्रकट है, जहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई थी, उसका नाम है किशोरी कुंड, वहाँ पर भी आप जल्दी जाकर जल्दी आएंगे, वहाँ पर बहुत टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, दो काम करेंगे और दर्शन तो आपका हो गया सबका ना, हाँ तो दर्शन करेंगे सब लोग। तो अभी मैं थोड़ा 5 मिनट गाता हूँ।